आज की बात।
कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बनी एक फिल्म के बाद उठे विवाद पर चर्चा कर रहे हैं। फिल्मों में भारत का बड़ा नाम है और इस देश में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ ही फिल्मों पर चर्चा होती है और ये चर्चा अलग अलग कारणों से होती है। आजकल भी एक फिल्म पर खूब चर्चा हो रही है और भारतीय मीडिया उस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। वजह यह है कि इस फिल्म में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है और विवाद इसलिए भी है कि भारत में चुनाव होने वाले हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म पर तरह तरह की चर्चा हो रही है, विरोध और समर्थन सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस विवादित फिल्म में काम करने पर स्वयं अनुपम खेर का क्या कहना है। उन्होंने टीवी पर अपने एक इंटरव्यू में अपने ऊपर लगने वाले बहुत से आरोपों का जवाब दिया और इस फिल्म में काम करने पर सफाई भी पेश की।
एक सच्चे नागरिक की भेंट है उसके प्रधानमंत्री को, जिसकी वो इज्जत करता है, और भेंट मेरी नहीं है ये पिक्चर करने। मुझे उनकी तारीफ आप ऑलरेडी मुझे डिस्क्राइब कर चुके हैं, पिक्चर करके मैं क्या प्रूव कर लूँगा? पिक्चर में तो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर भी है, इतने साल मैंने काम किया है, ऐसा भी हो सकता है। ये एक कलाकार की देन है अपने आप को। क्या 2004 से लेकर 2014 पे जो किताब, जिस किताब पर आधारित है, और वो किताब उनके रसोइये ने नहीं लिखी है, वो उनके मीडिया एडवाइज़र की है, जिसको जो अच्छे खासे पत्रकार रह चुके हैं और उसको उसकी जो चयन हुआ था वो प्रधानमंत्री ने खुद किया था और वो 5 साल वहाँ रहा है। अगर उस किताब से इनको कोई आपत्ति होती, इनमें से किसी को भी, प्रधानमंत्री को या इनके आसपास को, उस किताब को बैन कर देना चाहिए था या उन पर बारू साहब के ऊपर मुकदमे कर देने चाहिए थे। पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर आज तक कोई पॉलिटिशियन इस बात से चूकता है कि मेरे को मौका मिला है तो मैं उसको नहीं, मतलब उन्होंने मुझे इस फिल्म को जरिया बनाया, तो आई थिंक ये उनकी राजनीतिक सोच है और दूरदर्शिता मैं मानता हूँ, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है।
हालांकि अनुपम खेर और इस फिल्म के दूसरे समर्थकों की कोई भी दलील फिल्म का विरोध करने वालों के लिए संतोषजनक नहीं है और इस फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये नाम मनमोहन सिंह जी को, जो सबसे केपेबल प्राइम मिनिस्टर था देश का, उसके अगेंस्ट में ये मूवी किया गया, उसका विरोध में हम लोग एक ही चीज करेंगे कि ये मूवी बंद होना चाहिए। जैसे जैसे कांग्रेस लीडर लोग को, नरेंद्र मोदी अपना चीप पॉलिटिकल कैरेक्टर को जाहिर करते हुए सब चीज कर रहा है, तो उसका विरोध में आज कांग्रेस पूरा भारतवर्ष में प्रोटेस्ट कर रहेगा कि जैसे भी हो ये मूवी बंद होना चाहिए।
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिल्म का विरोध करते हुए भाजपा पर कई आरोप भी लगा दिए।
एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म है उसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रोड्यूस करने का काम किया है। गुट्टे जो इस फिल्म के निर्माता है, सैकड़ों करोड़ के घोटाले में लिप्त परिवार है, घोटाले से फिल्म, पैसे से फिल्म बनाई गई है, और हमें लगता है चुनाव में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए घोटालों के पैसे से बनाई गई फिल्म ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार की गई है।
हालांकि इस फिल्म में मुख्य भूमिका करने वाले अनुपम खेर की पत्नी और बीजेपी लीडर किरण खेर ने रिलीज से पहले फिल्म का भरपूर समर्थन किया।
एक्चुअली दिस इज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म, इट्स अ कल्ट फिल्म इफ यू आस्क मी. जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, i.e. मिस्टर राहुल गांधी, तो उन्हें अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए. अब ये देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ रही है 11 जनवरी को, बेस्ड ऑन संजय बारूस बुक एडवाइजर फॉर 5 years टू डॉक्टर मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UPA एट दैट टाइम.
फिल्मों से जुड़े विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म में बीजेपी की भूमिका से इनकार करते हैं.
मैं जिस बात से सहमत नहीं हूं कि ये फिल्म बीजेपी क्यों, अरे अगर बीजेपी ने अपने हैंडल से किया है तो उसमें क्या गलत बात है. कांग्रेस भी तो अपने हैंडल से प्राइम मिनिस्टर को गाली देते रहते हैं. अरविंद केजरीवाल अपने हैंडल से कितनी फिल्मों को प्रमोट कर चुके हैं, कितनी सारी फिल्मों को. इस पॉलिटिकल नैरेटिव में जिसको जो भी चीज मिलेगी अपने नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए वो करेगा, और हर कोई करता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है. अनुपम खेर जी ने जो फिल्म की, आप रोल देखिए, बच्चा बच्चा कह रहा है कि वो मनमोहन सिंह जैसे लग रहे हैं उनका, यानी तो इट्स ऑस्कर क्वालिटी परफॉर्मेंस, उसकी तारीफ करनी चाहिए. तीसरी बात यह है, क्या फिल्म के आने से सत्य बदल जाएगा?
बीजेपी लीडर प्रेम शुक्ला के विचार भी एक टीवी चैनल पर सुन लें.
फिल्म पर अगर ट्वीट किया जाए तो मुझे लगता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंश है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अलंबरदार बनने वाली पार्टी, जो अभी कुछ दिन पहले उड़ता पंजाब जब रिलीज हो रही थी तो उस समय जो है राहुल गांधी कह रहे थे कि उड़ता पंजाब पर यदि किसी प्रकार का जो है कोई विरोध करता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करता है. तमिल फिल्म रिलीज हो रही थी तब भी राहुल गांधी इसी तरह की ट्वीट कर रहे थे. तो क्या अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो उसमें कांग्रेस को जो है एक्सेप्शनलाइज कर दिया जाएगा कि नहीं, ये कांग्रेस के मामले में जो है या कांग्रेस के संदर्भ में कोई पुस्तक लिखी जाएगी या कोई फिल्म बनेगी, चाहे वो हिंदू सरकार हो चाहे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसमें जो है कांग्रेस से विशेष करके अनुमति ली जाएगी कि मुझे जो प्रिय लगेगा मैं उसको ट्वीट करूंगा, जो मुझे अप्रिय लगेगा मैं उसको ट्वीट नहीं करूंगा. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह अंश शामिल है ना.
वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने इसी वार्ता में कहा,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी है, लेकिन हमारे भाजपा के मित्र ये तो बताएं कि उन्होंने इसको क्यों ट्वीट किया. आप देखिए, एक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म है. एक फिल्म जो होती है उसका आधार एक किताब पुस्तक के आधार पे, पुस्तक में जो जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, मतलब उस जमाने के कार्यकाल में जिसमें संजय बारू साहब शामिल थे उन्होंने उसका उल्लेख किया है. बहुत सी बातें उस समय भी विवाद में उठी थी. अब चुनाव का समय आया है, 2014 में जब चुनाव होने वाले थे तब किताब आई थी. तो ये पूरी इसके पीछे एक राजनीति है जिसको कांग्रेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए. कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, देखिए जनता के विवेक में छोड़ना चाहिए. यहां तक तथ्य है, तथ्य की बात पर जरूर उंगली उठानी चाहिए और वो मुद्दा होना चाहिए कि क्या सोनिया गांधी चाहती थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने. हमारे स्मरण में तो ऐसी बात नहीं है, किताब में भी इसका उल्लेख नहीं है. फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक परिवार ने जो है मनमोहन सिंह को मैनिपुलेट किया तो 2009 में कैसे उसको एक बार फिर बहुमत मिल गया और मनमोहन सिंह को और ज्यादा मान सम्मान बढ़ा. तमाम प्रश्न है जिसके तथ्यात्मक पहलू के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए.
रशीद किदवई टाइमिंग पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं,
ये तो बिल्कुल दो दो चार की तरह साफ बात है. बिल्कुल लेखक का अधिकार है, फिल्म निर्माता का अधिकार है, फिर भी लेकिन ये समझ में आता है कि 5 साल के अंतराल के बाद में क्यों, पहले उस समय चुनाव से पहले, अब चुनाव से पहले. दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें शिकायत और तकलीफ किसको होनी चाहिए. अगर मनमोहन सिंह का अनादर नेहरू गांधी परिवार ने किया तो मनमोहन सिंह को करना चाहिए. मनमोहन सिंह तो आज बैठे हुए राहुल गांधी के साथ बैठ के कांग्रेस के स्थापना दिवस में केक खा रहे हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है, हर कार्यक्रम में वो राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ खड़े होते हैं. और एक जो उनका मीडिया सलाहकार वो कहते हैं कि साहब उनके साथ उनकी बेइज्जती हुई, उनकी बदनामी हुई, उनको काम नहीं करने दिया. बहुत ही बेतुकी सी बात समझ में आती है. उसके पीछे भाजपा जो है पूरी अपनी ताकत लगा रही है. भाई भाजपा को राजनीतिक कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, चुनाव लड़के देख ले और लड़ते रहें और उसका राजनीतिक मुकाबला करें. एक किताब और फिल्म, इन सबसे कुछ उनको हाथ नहीं लगने वाला.
जेडीयू के नेता अजय आलोक की बातें भी सुने.
किताब जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 14 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री के ऑफिस से एक बयान जारी होता है पीएमओ से, और पीएमओ से यह बयान जारी किया जाता है कि यह किताब बेसलेस है, मिसचीवियस है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए. 14 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनपे जब यह सवाल पूछा जाता है संजय बरुआ के बारे में तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते हैं. 14 अप्रैल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार डीमोनेटाइजेशन पे किया, एक बार जीएसटी पे किया. उन्होंने इस बारे में संजय बरुआ के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की। हर चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं मनमोहन सिंह, लेकिन अपने ऊपर, अपने प्रधानमंत्रित्व काल पे उनके निजी सहायक ने जो जो टिप्पणी की है उसको क्लैरिफाई खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं कर रहे हैं, और आप प्रश्न उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पे, ये भी एक आश्चर्यजनक पहलू है।
टीवी पर एक वार्ता में किताब के लेखक संजय बारू के बारे में प्रसिद्ध विश्लेषक अमलेंदु उपाध्याय ने इस प्रकार से अपना विचार प्रकट किया।
देखिए, बड़ा सवाल यही है कि मुझे नहीं लगता कि संजय बारू साहब की वहाँ ये हैसियत थी कि वो दिन में 5 बार प्राइम मिनिस्टर से मिल पाते हों या 5 महीने में प्राइम मिनिस्टर से मिल पाते हों। सिर्फ मीडिया एडवाइज़र थे और प्रवक्ता थे, लिख के आता होगा वो बोलते होंगे। दूसरी बात ये है कि ना तो सोनिया गांधी इतनी कम अकल होंगी और ना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने कम अकल होंगे कि अपने मुंशी जी को साथ में लेकर के जाएं और वहाँ जाकर के बात करें कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, और सोनिया गांधी उनके सामने कहने कि नहीं नहीं आप इस्तीफा मत दीजिए। तीसरी चीज़ जो है, जो बात उठ रही है संजय बारू साहब के बारे में, तो संजय बारू साहब को वहाँ नौकरी एक पत्रकार की हैसियत से नहीं मिली, चूंकि उनके पिता जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के सहयोगी थे, उनके बेटे की हैसियत से उनको वहाँ नौकरी मिली। तो अब ये संजय बारू साहब के ऊपर है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और अगर इतने अच्छे थे संजय बारू साहब और डॉक्टर मनमोहन सिंह का उनके ऊपर इतना भरोसा था कि वो इस्तीफा देने के लिए जाएं और संजय बारू साहब को साथ लेके चले जाएं, तो भैया 2008 की बात का एको नहीं रख लिया संजय बारू साहब को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने साथ, और 2014 में क्यों नहीं फिर उन्होंने मान लिया कि नहीं संजय बारू साहब बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से ट्रेलर दिखाया जा रहा है, जो संजय बारू साहब जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मैं तो जो हूँ पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए काम नहीं करता हूँ, और मैं तो लोगों की कहानियां लिखता हूँ, तो साहब आप इससे पहले आपने और कितनी कहानियां लिख दी। संजय बारू साहब तो सिर्फ मुंशी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, जब माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उनके सहयोगी थे संगठन में गोविंदाचार्य जी, उन्होंने कह दिया था मुख नहीं मुखौटा है, आज तक पुनर्वास नहीं हो पाया गोविंदाचार्य जी का। तो भैया दूसरे घर में झांकने से पहले अपने घर में भी झांक।
अमलेंदु उपाध्याय। तो किसी भी मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठाना ये निश्चित रूप से भारत जैसे देश में हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है और सारी पार्टियां ऐसा करती हैं। इस लिहाज से यदि कोई पार्टी किसी फिल्म से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है तो इसके लिए उसकी आलोचना कदापि नहीं की जा सकती, किंतु यदि जानबूझकर संस्कृति, मनोरंजन और राजनीति को एक दूसरे से मिलाया जा रहा है तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, और इससे संस्कृति, कला और उसके जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा किया जाने लगेगा और ये चीज़ें भी दलों में बढ़ जाएंगी, और निश्चित रूप से संस्कृति, कला और उसके जिम्मेदार ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। We'll be right back.